प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। आज यानी 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च मॉस्क अटैक के 6 साल पूरे हो गए हैं। ये हमला न्यूजीलैंड के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक रहा है। 15 मार्च 2019 को असॉल्ट राइफल धारक एक व्यक्ति ने अल नूर मस्जिद और लिनवुड इस्लामिक सेंटर में नमाजियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कि 51 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए। इस घटना को लाइव स्ट्रीम भी किया गया था। एक अमेरिकी हंटिंग इन्फ्लुएंसर जिसने कि एक शिशु वॉम्बैट को उसकी मां से अलग करके ऑस्ट्रेलिया में आक्रोश पैदा किया था, ने शुक्रवार यानी 14 मार्च को अपने कथित प्रस्थान के बाद देश की आलोचना की है। सैम जोन्स को एक वॉम्बैट को उसकी मां से अलग करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे कि दोनों जानवरों को वापस मिलाने में परेशानी हुई है। इस विवाद ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया, जबकि इमिग्रेशन मंत्री टोनी बर्क ने इस बात की समीक्षा की कि क्या जोन्स ने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है या नहीं। शनिवार की सुबह जोन्स ने एक लंबे इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपना बचाव किया, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जानवरों के साथ व्यवहार की निंदा की है। बात करें मौसम की तो आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में इस हफ्ते के अंत में संक्षिप्त लेकिन तेज गर्मी की हवाएं चल सकती हैं। इस लू के दौरान तापमान में अचानक वृद्धि होने से पहले मौसम के अचानक बदलने की संभावना है। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेरी वैंस का कहना है कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के पूर्व में परमाणु हथियार तैनात करने का समर्थन करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होगा। फॉक्स न्यूज पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पोलिश राष्ट्रपति एंड्रजेज डुडा उस अनुरोध के संदर्भ में बोल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका से रूस को रोकने के लिए पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का अनुरोध किया था। ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर ने कहा है कि जब तक युद्ध विराम लागू नहीं हो जाता तब तक वे यूक्रेन में अपने कर्मियों को भेजने पर विचार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी आज रात विश्व नेताओं के साथ एक कॉल में शामिल होंगे, जिसका आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा शांति स्थापना प्रयासों पर चर्चा के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कॉल में जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन और कनाडा के नेता भी शामिल होंगे। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड पर नवीनतम जीएसटी कटौती के तहत सेवाओं में कटौती या टैक्स में वृद्धि करने का दबाव है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई व्यापक जोखिम नहीं है। एएमपी के मुख्य अर्थशास्त्री शेन ओलिवर का कहना है कि विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षा से आश्चर्यचकित नहीं है, जिसमें कि 2025 और 2026 में विक्टोरिया को बड़ा हिस्सा मिलने की सिफारिश की गई थी। जनसंख्या वृद्धि और माइनिंग रेवेन्यू की कमी के कारण राज्य को अतिरिक्त 3.9 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। वहीं पूर्व बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिससे कि वे देश के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें कोई खास राजनीतिक अनुभव नहीं है। 59 वर्षीय कार्नी ने पार्टी प्रतिद्वंदियों को हराकर सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है, जिन्होंने 9 वर्षों से अधिक समय तक कनाडा का नेतृत्व किया। बात करें भारत की तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बीते साल कैंपस में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके बाद भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन ने अमेरिका छोड़ दिया है। कैंपस में बीते साल हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करने के अभियान में शामिल रहे कुछ छात्रों को विश्वविद्यालय ने या तो निलंबित कर दिया है या उन्हें निकाल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय की 40 करोड़ डॉलर की फंडिंग ये कहते हुए रोक दी है कि वो कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने में नाकाम रहा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।